समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कभी आपने ध्यान दिया हो तो पाया होगा कि चीजें अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी या बुरी लगती हैं। याद करिए स्टूडेंट लाइफ, वही घंटी जो सुबह के समय बहुत बुरी लगती थी, छुट्टी के वक्त खुशियों का पैगाम लाती थी। ऑफिस की घड़ी का सही समय कभी नहीं सुहाता। सुबह घड़ी की सुइयां 10-15 मिनट आधा घंटा पीछे करने को और शाम को उसी घड़ी की सुइयां 10-15 मिनट आधा घंटा आगे करने को जी चाहता है। और ठीक वैसे ही आजकल मई जून की गर्मी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है, जबकि आजकल के मौसम की ठंडक की ख्वाहिश गर्मियों में पुरजोर तरीके से होती है। लेकिन सच यही है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, ख्वाहिशें कुछ भी हों, मगर वास्तविकता ही सबसे अहम है और हमें उसी के मद्देनजर अपनी जिंदगी प्लान करनी चाहिए। आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरे साथ नवनीत सिंह। गुड मॉर्निंग नवनीत।
हेलो नईम अख्तर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 24th of November. So let's begin with the headlines, Naeem.
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारित किया जाएगा।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द ओडिशा पर्व 2024 प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली टुडे। ही विल ऑल्सो एड्रेस द गैदरिंग ऑन द ओकेजन। Odisha Parb is a flagship event conducted by Odia Samaj, a trust in New Delhi. Through it, they have been engaged in providing valuable support towards preservation and promotion of Odia heritage. Continuing with the tradition, this year Odisha Parb is being organized from 22nd of this month to till today. It showcases the rich heritage of Odisha, displaying colorful cultural forms and will exhibit the vibrant social, cultural and political ethos of the state.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत को सुशासन और विकास की जीत बताया है। दिल्ली में कल शाम भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम नकारात्मक राजनीति की हार है। श्री मोदी ने कहा कि कई राज्यों में हुए उपचुनावों में भी लोगों ने भाजपा के प्रति भरोसा दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि ये जीत दिखाती है कि लोग केवल विकास चाहते हैं। श्री मोदी ने पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए महिलाओं, किसानों और युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और ये निस्संदेह ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि जब सुशासन की बात होती है तब देश केवल भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर ही भरोसा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूत किया है।
इन झारखंड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 81 सीट्स, रूलिंग JAM हैज बैग्ड 34 सीट्स, व्हाइल कांग्रेस वन 16 सीट्स, RJD वन 4 सीट्स, BJP गॉट 21 सीट्स एंड अदर्स हैव वन 6 सीट्स। The INDIA block comprises JMM, Congress, Rashtriya Janata Dal and Communist Party of India, Marxist-Leninist. Our correspondent reports that newly elected legislators of INDIA block will hold a meeting today.
सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी।
In tennis, N. Sriram Balaji and Ritwik Bullipalli have won men's doubles title at the ATP Challenger Tour in Italy. We have a report.
The Indian duo has brought glory to Indian tennis as they defeated second-seeded French tennis player Theo Aribage and his Portuguese partner Francisco Cabral in the final of ATP Challenger Tour in Italy yesterday. This was Ritwik's second, while the 34-year-old Balaji's first title on the ATP Challenger Tour. Moving on to cricket, the preparations for India's cricket festival, that is Indian Premier League, has begun as the auction for the 2025 edition will be held in Jeddah, Saudi Arabia today and tomorrow. This is the second successive year the auction is being held overseas. A total of 1,574 cricketers with 409 overseas have been signed up for the auction this time. Each franchise will be able to form a maximum squad of 25 players. Next update is from hockey, where in the Men's Junior Asia Cup starting from 26th of November, the Indian team captained by Amir Ali will aim to secure their fifth title in Muscat, Oman. The defending champions India will kick off their campaign against Thailand on 27th of November. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का वक्त है. तो नवनीत, कौन कौन सी खबरें हैं आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
यस नईम, आई थिंक लेट्स हेड टू चेन्नई फर्स्ट फॉर सम न्यूज अपडेट्स.
जी,
फॉरेस्ट ऑफिशियल्स डेमोलिश्ड मोर देन 55 स्ट्रक्चर्स व्हिच वर आइडेंटिफाइड एज एनक्रोचमेंट्स. डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वीए सर्वनन सेड दैट अ टोटल ऑफ 60 स्ट्रक्चर्स वर आइडेंटिफाइड एंड नोटिसेस वर सर्वड. All those who had submitted their Aadhaar cards and other documents have been allocated alternative settlements in cemetery constructed by TN Habitat Development Board. All the encroachments are being cleared based on directions from the Madras High Court. And also, the Controller and Auditor General Office at Chennai held a mini marathon to celebrate the audit week. The Director General of CAG, Tirupati Venkataswamy, participated in the run. Interacting with the media after the event, he said that the marathon is to create awareness on auditing and also as part of the celebration of the week. And also some more news, Naeem, from Chennai itself. Drunken driving caused injuries to 8 people, including students traveling in an auto rickshaw near Chengalpet. All the injured are stable. Karthik of Pinnayur near Chengalpet was driving his car towards Thimmavaram after consuming alcohol. A case has been registered on the incident. Air intelligence officers of the Anna International Airport at Chennai intercepted 2 passengers who arrived from Bangkok based on specific inputs. Upon examination of the check-in baggage, hydroponic weeds of cannabis, ganja, marijuana, totaling 2,854 grams were found concealed and were seized. Customs K9 squad were deployed in identifying narcotics which were concealed in the baggage. Both the passengers were arrested under the NDPS Act and were remanded to judicial custody. Further investigation is under process. Over to you, Naeem, now.
जी, दिल्ली से कुछ खबरें मेरे पास हैं. उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल रेलवे कॉलोनियों में सफाई अभियान चला रहा है. ये अभियान स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा और विशेष अभियान 4.0 के तहत सितंबर और अक्टूबर में आयोजित कार्यक्रमों को जारी रखते हुए शुरू किया गया है. रेलवे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सदर बाजार, तुगलकाबाद, लाजपत नगर, गाजियाबाद और अन्य रेलवे कॉलोनियों सहित मंडल अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयों में सफाई की जा रही है. दिल्ली की एक बहुत अहम खबर जो आजकल पूरे देश की नजर जिस पर है, राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. मेले में देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. इस महीने की 27 तारीख तक चलने वाले इस मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के अलावा कई राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं. इसके अलावा मेले में चीन, मिस्र, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया के काउंटर भी हैं. इस मेले में हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजन से जुड़े कई काउंटर भी हैं जहां लोगों की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. और एक और आखिरी खबर दिल्ली से मेरे पास है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला सिंधु बॉर्डर पर ग्रैप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि कई स्थानों से ग्रैप 4 के नियमों के उल्लंघन के शिकायतों के चलते वो स्थिति का आकलन करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। श्री राय ने उत्तर भारत के अन्य राज्यों से भी ग्रेव 4 को सख्ती से लागू करने की अपील की।
कर्नाटका गवर्नर थवरचंद गहलोत फ्लैग्ड ऑफ एन एंटी नार्कोटिक कैंपेन फ्रॉम राजभवन इन बेंगलुरु यस्टरडे। The Yuva Shuddhi Abhiyan, organized by the Bharatiya Nurses and Allied Sangh, is aimed at creating awareness on the dangers of drug abuse among youth in college campuses. Speaking on the occasion, the governor said that youth is the pillar of our society that shapes the nation's future. The youth cultivating a healthy, innovative and value-based environment will build a better and developed India. These were the updates from Bengaluru, Naeem.
जी, महाराष्ट्र से, इनफैक्ट मुंबई से मेरे पास दो खबरें हैं। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा, यानी कल कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री फडणवीस ने महिला मतदाताओं का विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके पूरे दिल से समर्थन और वोट से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अविश्वास जताया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्री ठाकरे ने राजनीतिक परिदृश्य में अप्रत्याशित बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त किया। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लोगों की उम्मीदों और भावनाओं के विपरीत हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चेन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस एमवीए गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर इतना बड़ा बदलाव असंभव लगता है। एक और खबर मुंबई से यह है कि मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट जोन 3 के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने शुक्रवार और शनिवार को 3 मामलों में 2 किलो 947 ग्राम वजन का सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।
एंड सम न्यूज अपडेट्स फ्रॉम हैदराबाद। A 39-member Navy band from the Eastern Naval Command took the audience on a musical journey during a performance at the Navy House in Hyderabad last evening. The event was held as part of the Navy Week 2024 celebrations to commemorate the Indian Navy's devastating attack on Karachi during the 1971 Indo-Pak War. With Telangana Governor Jishnu Dev Verma taking part in the event, the band played spiritedly from Pirates of the Caribbean to global melodies and classical music.
और एक खबर कोलकाता से है मेरे पास। पश्चिम बंगाल सरकार ने कुर्सियोंग में आईटी पार्क बनाने का फैसला किया है। उद्योग विभाग ने बताया है कि राज्य सरकार और वेबले ने सर्वेक्षण पर रिपोर्ट पेश कर दी है। काम का पहला चरण अगले साल पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास कुछ खास खबर है शायद।
जी नईम, ऐसा इवेंट जिसके बारे में not only in India but globally the audience look forward to the cinema enthusiasts especially. So the 55th International Film Festival of India, with its theme Young Filmmakers, The Future Is Now, is witnessing remarkable youth participation in the festival.
हमारे संवाददाता ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से इस सिलसिले में नवनीत बात की, जिन्होंने बताया कि वेव्स ओटीटी जल्द ही देश के हर घर में पहुंच जाएगा। इस बारे में हमारे पास हमारे संवाददाता से एक रिपोर्ट भी है, उसे सुनते हैं।
जी बिल्कुल।
पचपनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित फिल्म बाजार का आज आखिरी दिन है। फिल्म बाजार में देश विदेश से आए फिल्म व्यापार के दिग्गज और कलाकार एक दूसरे से न सिर्फ नेटवर्क कर रहे हैं, बल्कि फिल्म बाजार के माध्यम से युवा फिल्मकारों को वैश्विक सिनेमा में अपना लोहा मनवाने का एक मंच भी मिला है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि भारत में फिल्म बाजार से बड़ा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा, नए फिल्म मेकर्स, नई स्टोरीज बहुत जरूरी है और फिल्म बाजार में उनसे मिलने का मौका मिलता है। हाल ही में लॉन्च हुए वेव्स ओटीटी पर अपनी राय रखते हुए मुकेश छाबड़ा ने बताया कि वेव्स नेटफ्लिक्स और अमेजन की टक्कर का ऐप है और जल्द ही ये भारत के घर घर में होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश का ऐप है जहां हर आदमी अपनी भाषा में कुछ न कुछ देख सकता है।
ये जो प्लेटफॉर्म है ना, होता क्या है कि हम लोग अमेजन नेटफ्लिक्स एक ही तबके के लोग देख रहे हैं। ये वेव्स है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर पंचायत, जैसे हम दूरदर्शन घरों घरों में है ना, अब ये ऐप सब जगह होगा और होना भी चाहिए। हम हर बार नेटफ्लिक्स और अमेज़न के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारा खुद का ऐप, हमारे देश का ऐप है, हर आदमी उस ऐप में आ सकता है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन के मुख्य सत्रों की बात करें तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की प्रदर्शनी के तहत आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट द्वारा एक फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए भारतीय सिनेमा के 6 दशकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सवेरे के लिए दुर्गेश भदौरिया के साथ ओमवेश उपाध्याय, गोवा।
और नवनीत, अब देश के प्रमुख महानगरों के मौसम के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे श्रोताओं को यकीनन इसका इंतजार होगा क्योंकि मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी। सुबह से ही हमारे जितने भी श्रोता हैं वो देख ही रहे हैं। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सुबह के समय धुंध छाने और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And for some weather updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad, Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius. And that's all we have in the weather segment.
जी, सिर्फ वेदर सेगमेंट का यहाँ पे हम कहेंगे कि समापन हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी आज की तारीख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का वक्त है, क्योंकि 24 नवंबर के दिन क्या क्या खास हुआ दुनिया के किस किस कोने में, उसके बारे में एक छोटी सी हल्की सी झलक अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं।
Yes, Naeem. So, looking at the historical events, on this day, 24th November in 1784, French inventor Jean-Pierre Blanchard and American John Jeffries crossed the English Channel in a hydrogen balloon, marking a significant milestone in aviation history.
आज ही के दिन 1859 में चार्ल्स डार्विन की On the Origin of Species का प्रकाशन हुआ था। 1871 में 24 नवंबर को नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NYC का गठन हुआ था।
In 1923, Ethiopia, one of the oldest nations in the world, was admitted to the League of Nations, marking an important moment in global diplomacy and African representation.
1966 में 24 नवंबर को कांगो की राजधानी किंसासा में पहला टीवी स्टेशन खुला था।
And in 1981, The United States successfully tested its first air-launched cruise missile, ALCM, marking a significant milestone in the development of precision-guided weapons system. And also in 1989, Sachin Tendulkar achieved a remarkable feat by scoring half a century in a test match at the age of 16 years and 214 days. Becoming the youngest cricketer to score a 50 in Test cricket at the same time. This historical moment came during his second Test match, which was against Pakistan at Karachi.
और इसके बारे में खास बात ये भी है नवनीत के जिस वक्त सचिन तेंदुलकर उसमें खेलने के लिए उतरे थे तो न सिर्फ उनकी विरोधी टीम को बल्कि शायद पूरी दुनिया में भी किसी को यकीन नहीं होगा कि इतना छोटा सा बच्चा, क्योंकि वो बहुत छोटे थे भी और दिखते भी थे, कि वो इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाएंगे और आगे चल के इतना बड़ा नाम कमाएंगे कि पूरे देश का नाम रोशन हो
जाएगा। And on this day in 1993, the government of India instituted the Tenzing Norgay National Adventure Award to honor individuals for outstanding achievements in the field of adventure on air, land or water.
1998 में 24 नवंबर को इमाइल लाहौद ने लेबनन के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 1999 में एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजू रानी देवी ने रजत पदक जीता। और उसके बाद तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शायद स्पोर्ट्स की खास बातें करने का दिन है कि कुंजू रानी देवी ने कितना नाम कमाया है और उनके नाम के बगैर भी अगर हम कहें तो भारोत्तोलन के क्षेत्र में बात करना निरर्थक रहता है। जी, तो ये तो बात हुई आज की दिन के इतिहास की, 24 नवंबर के इतिहास की। लेकिन 24 नवंबर का इतिहास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम उन शख्सियतों की बात ना करें जिन्होंने आज ही के दिन या तो जन्म लिया या जो आज ही के दिन हमारी इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। तो आते हैं हम अपने आखिरी चरण में, आखिरी पड़ाव की तरफ, और सबसे पहला नाम जो मैं शामिल कर रही हूं वो है उमा देवी खत्री का। उमा देवी खत्री जिन्हें आमतौर पर हमारे जो श्रोता हैं आम तौर पर नहीं जानते हैं इस नाम से, लेकिन अगर मैं कहूं कि उनका स्क्रीन नाम टुनटुन था तो हर शख्स, हर श्रोता एकदम जान जाएगा और वो क्योंकि इसी नाम से मशहूर हुई थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, 11 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 2003 में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। भारतीय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री हास्य कलाकार भी रही उमा देवी खत्री। उमा देवी खत्री को मैंने इसलिए कहा कि पार्श्व गायिका रही क्योंकि उन्होंने जब शुरुआत की थी फिल्मों में अपने करियर की तो उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में ही प्लेबैक सिंगर के तौर पर ही अपने करियर का आगाज किया था। बाद में वो उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा, हास्य कलाकार बनी, वो बाद की बात है, लेकिन शुरुआत जो थी उनकी वो गायिका के तौर पर थी। और सबसे जो हैरानी और अचरज वाली बात है नवनीत वो ये कि उन्होंने संगीत की कभी भी कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली थी, कभी भी उन्होंने कहीं से संगीत नहीं सीखा था, लेकिन उन्होंने गाया जब तो बहुत अच्छा गाया। और उमा देवी की अगर हम बचपन की बात करें तो बहुत ही कम उम्र में, जब वो बहुत ही छोटी बच्ची थी तभी वो अनाथ हो गई थी, उनको अपने माता पिता की भी याद नहीं, बहुत बचपन जो था उनका गरीबी में बीता। फिर जब वो बड़ी हुई तो तब उनकी मुलाकात उस दौर के आबकारी ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई जिन्होंने उनकी मदद भी की और उन्हें प्रेरित किया कि उनके अंदर एक कलाकार है उसको आगे लेकर जाएं और कुछ करके दिखाएं। तो फिल्मों में फिर वो गाने के लिए यहां मुंबई चली गई थी। इस मौके पर 23 साल की उम्र थी तब घर छोड़ा उन्होंने, मुंबई पहुंची और क्योंकि वो संगीतकार नौशाद अली की बहुत बड़ी फैन थी तो ढूंढते ढूंढते सबसे पहले वो उन्हीं के पास पहुंची और उन्हीं से जाकर के उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि मुझे गाना गाना है क्योंकि मैं गा सकती हूं, हालांकि मैंने सीखा कहीं नहीं है, और अगर आपने मुझे गाना नहीं गाने को दिया तो उन्होंने धमकी दी कि मैं समुद्र में कूद के अपनी जान दे दूंगी। एक्चुअली तो नौशाद ने पहले तो मतलब कोई भी इस तरह नहीं लेंगे, लेकिन उनकी जो जिद देखी तो उन्होंने कहा एक बार सुन के देख लेते हैं। उनको सुना तो सुन के पता चला कि वो तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो बस इसी वजह से उन्होंने उनको गाने का मौका दिया। जल्द ही उमा देवी खत्री यानी टुनटुन ने निर्माता निर्देशक एआर कारदार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिन्होंने नौशाद को संगीत निर्देशक के रूप में इस्तेमाल किया और नूरजहां, राजकुमारी, खुर्शीद बानो, जोहरा बाई अम्बाले वाले जैसे संगीत दिग्गजों के बीच, पार्श्व गायिकाओं के बीच खुद के लिए उमा देवी ने जगह बनाई। 1947 में उन्होंने गीत गाया अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का, जो इतना कामयाब रहा कि आज की पीढ़ी को भी ये गाना बहुत अच्छी तरह पता है। तो इस गाने को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बस और बता दें कि इसके बाद उनका पार्श्व गायन का जो दौर था वो बहुत जल्द खत्म हो गया क्योंकि उनकी आवाज पर कुछ बुरा असर पड़ा और वो फिर उस तरह गा नहीं सकी, तो उन्होंने संगीतकार नौशाद के ही सलाह पर अभिनय की तरफ रुख किया और फिर टुनटुन नाम से उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। तो उनके पार्श्व गायन के बारे में हमने इतनी बात की है तो एक गीत उनका वही सुन लेते हैं।
बिल्कुल।
अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ।
वर्ल्डली अटैचमेंट्स आर लाइक अ ड्रीम, दे सीम रियल बट वैनिश व्हेन यू अवेकन। Remembering Guru Tegh Bahadur Ji, the ninth Sikh Guru, with these words, today marks the martyrdom of Sikh Guru Tegh Bahadur. It is celebrated with great reverence by the Sikh community. This day honors the Guru's profound spiritual teachings and his ultimate sacrifice for religious freedom and human rights.
Nove Guru the?
यस नईम नाइन्थ से गुरु
और गुरु तेग बहादुर उनको इसीलिए कहा जाता है कि उनकी तेग में यानी कि तलवार में बहुत ताकत
जी बिल्कुल
इसीलिए उनका नाम तेग बहादुर पड़ा
एब्सोल्युटली गुरु तेग बहादुर इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज अनवेवरिंग करेज एंड कंपैशन एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द ऑप्रेस्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ एंड ऑल्सो नईम गुरु तेग बहादुर जी कंट्रीब्यूटेड 116 हिम्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब emphasizing themes like detachment, fearlessness, and ephemeral nature of life. And some more interesting facts about Guru Tegh Bahadur. He founded the town of Anandpur Sahib in 1665, which later became a significant center of Sikhism.
Right.
And also Naeem, Guru Tegh Bahadur was remembered as Hind Di Chadar, that is Shield of India, for his sacrifice to uphold religious liberty. His life and teachings continue to inspire principles of courage, equality and freedom. And also listeners, the Guru Gurdwara Sis Ganj Sahib in Delhi marks the site of his martyrdom and Gurdwara Rakab Ganj Sahib commemorates the cremation of his body by devoted Sikhs.
जी आपने गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है तो मुझे एक और बड़ी शख्सियत का नाम याद आया जिनकी आज जयंती है जिन्हें भारत के लिए रहबरे आजम कहा जाता है जिनका असली नाम तो कुछ और था बताती हूँ अभी आपको उनके असली नाम क्या था लेकिन जो मशहूर है वो चौधरी छोटू राम के नाम से मशहूर है और वो स्वाधीनता सेनानी और राजनेता थे आज उनकी जयंती है गरीबों के बंधु के रूप में और रहबरे आजम कहा जाता था उनको और शारीरिक रूप से क्योंकि छोटे कद के थे इसीलिए उनके उनका नाम छोटू राम पड़ा हालांकि उनका असली नाम राय रिछपाल था सभी प्यार से उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे फिर स्कूल के रजिस्टर में भी जाने अनजाने उनका नाम छोटू राम ही दर्ज कर लिया गया और यहीं से राय रिछपाल से उनका नाम छोटू राम हो गया चौधरी छोटू राम ने राष्ट्र की स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया 9 जनवरी 1945 को चौधरी छोटू राम का देहावसान हो गया और एक और स्वाधीनता सेनानी थे उय्या लावड़ा नरसिम्हा रेड्डी उनकी भी आज जयंती है वो भारत के ऐसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और इससे पहले देशभक्त है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया 1847 में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और अंग्रेजों से लोहा लिया उनका कद इतना बड़ा था नवनीत के उनको उनके बारे में सूचना देने वालों को अंग्रेज सरकार ने 5,000 रूपये और उनके सिर के लिए 10,000 रूपये देने की घोषणा की थी जो उस वक्त सोचिए कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा और उन्हीं की जिंदगी पर एक फिल्म 22 फरवरी 2019 में आई तेलुगु फिल्म थी सई रा नरसिम्हा रेड्डी 1847 में उनको फांसी दे दी गई थी और उनको बस नमन ही करते हैं हम
Yes, we also celebrate the anniversary of another remarkable leader, a man whose dedication to service and nation building left an indelible mark on India's history, the first Chief Minister of Rajasthan, Pandit Hiralal Shastri. He was born in Jobmaner, a small village near Jaipur, and his tale was of perseverance, selflessness and vision. From his early years, he was passionate about education and social reform. He believed that true progress could only be achieved by uplifting the rural masses. He also established the Banasthali Vidyapeet, jisko sab jante hain aur itni famous excellence institution of excellence hai, that empowered women through education at that time when the idea of educating girls was indeed revolutionary.
जी आज जन्मदिन है अमोल पालेकर का और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए एक मशहूर अभिनेता निर्देशक के रूप में काम करते रहे हैं और कर रहे हैं अपने अभिनय से सभी का दिल जीतने के बाद वो उनके बारे में अगर हम ये कहें कि वो ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी डेब्यू फिल्म ने सिल्वर जुबली तो मनाई ही उसके बाद उनकी प्रदर्शित दोनों फिल्मों ने भी जुबली मनाई थी 1974 में रजनीगंधा फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया उसके बाद दो फिल्में 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चित्चोर प्रदर्शित हुई और इसके बाद उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996 में फिल्म दायरा के लिए मिला और अभी अगर हम कहें जो आपके कानों में आवाज आ रही हो गोलमाल फिल्म का टाइटल सॉन्ग इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया
कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
इनकी फिल्में ही ऐसी थी कि आम आदमी को इनसे बेहद प्यार हो गया, लेकिन अभी हमारी घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि इजाजत ले ली जाए। तो नवनीत, हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं, अनुमति दीजिए नईम अख्तर और नवनीत सिंह को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं खत्म करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।